इति व्यवसितः राजन् एषव एकचेतसः प्रत्युस्तं परिक्रम्य पन्थानां निवर्तनम् इति व्यवसिता राजन् हर्षव एकचेतसः प्रत्युस्तं परिक्रम्य पन्थानां निवर्तनम् इति इस प्रकार व्यवसिता नारद मुनि के उपदेशों से पूर्णतया आश्वस्त हुए राजन हे राजा ऐर्ष्वः प्रजापति दक्ष के पुत्र एक चेतसः सभी एकमत होने से प्रयुह विदाली तम नारद मुनि को परिक्रम्य प्रदक्षिणा करके पंथानम पथ पर अनवर्तनम जो इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं आता। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ शिल्पहुपाद द्वारा। शिल्पहुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षों को पूरी तरह विश्वास हो गया। उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस महामुनि की परिक्रमा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस श्लोक से हम दीक्षा तथा गुरु शिष्य के कर्तव्यों का अर्थ समझ सकते हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य को यह शिक्षा नहीं देता कि मुझसे मंत्र लो और मुझे कुछ धन दो और इस योग पद्धति का अभ्यास करके तुम भौतिकतावादी जीवन में दक्ष बन जाओगे। यह गुरु का कर्तव्य नहीं है। प्रत्युत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि वे किस तरह भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करना चाहिए और शिष्य का कर्तव्य है कि वह उसके उपदेशों को हृदयंगम करे और अंततः भगवत धाम वापस जाने के मार्ग का अनुसरण करे जहां से कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं आता। नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षवो ने सैकड़ों संतानें उत्पन्न करने तथा उनकी देखभाल करने के झंझट में पड़कर भौतिकतावादी जीवन में न फंसने का निश्चय किया। उनके भौतिकतावादी पिता ने जनसंख्या बढ़ाने का उन्हें आदेश दिया था किंतु नारद मुनि के वचनों में आकर वे उस आदेश का पालन नहीं कर सके। नारद मुनि ने उनके गुरु के रूप में उन्हें ये शास्त्रीय उपदेश दिए कि उन्हें इस भौतिक जगत का परित्याग कर देना चाहिए और उन्होंने प्रमाणिक शिष्यों की तरह उनके आदेशों का पालन किया। मनुष्य को इस ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में चक्कर लगाते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक तक चला भी जाता है तो उसे लौटना होता है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ति। कर्मियों के प्रयास समय का अपव्यय होते हैं। मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन की सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरु वैश्चय कृपा सिंधु वैवचय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतेष्टमत भक्ति वेदांत स्वामिति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षवों को पूरी तरह से विश्वास हो गया। उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस महामुनि की परिक्रमा करी और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई भी लौटकर इस जगत में नहीं आता। क्या निष्कर्ष निकलता है जी इससे? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया इस अनुवाद के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। दोबारा पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षवों को पूरी तरह से विश्वास हो गया। उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस महामुनि की परिक्रमा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता। क्या मैसेज है? गुरु पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास हो गया मीन्स देयर शुड बी एब्सोल्यूटली नो डाउट। आपको जो प्रमाणिक गुरु है, जिसको आप गुरु स्वीकार करते हैं, जिसने आपको दीक्षा दिया है, जिसने आपको भगवान के साथ जोड़ा है। दीक्षा, जब हम दीक्षा की बात करते हैं तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है? जब हमने दीक्षा नहीं ली थी तब भी हम 16 माला जप कर रहे थे, 4 नियमों का पालन कर रहे थे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, साधु संग कर रहे थे। दीक्षा लेने के बाद भी हम यही कर रहे हैं तो फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर क्या है? कार्य हम वही कर रहे हैं, कोई हमारे कार्य में चेंज नहीं आया, हमारे दो सींग नहीं निकल आए, हमारे पे मोर पंख नहीं लग गया, हमारे को स्पेशल नहीं हो गया, हमारी नाक लंबी नहीं हो गई, नाक छोटी नहीं हो गई, हमारे गाल नहीं फूल गए, कुछ नहीं हुआ। परंतु अंतर क्या आया है कि हम वही कार्य पहले भी कर रहे थे और वही कार्य हम आज भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, हमें दीक्षा लेने का फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट, इसका लाभ क्या है, दीक्षा लेने का लाभ क्या हुआ। वही 16 वाला जब करते थे पहले, एक साल किया, दो साल किया, तीन साल किया, पांच साल किया, जब से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए वही हम चार नियमों का पालन कर रहे हैं, पहले भी करते थे अब भी कर रहे हैं। वही हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, पहले भी करते थे अब भी करते हैं, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, अंतर क्या आता है। गुरु की तो पहले भी करते थे हम, जब हमें महाराज से मिलते थे, दीक्षा नहीं ली थी तब भी उनको हम जो आज्ञा देते थे उसका पालन करते थे। वो तो उसके बिना भी कर सकते हो आप, वही नहीं, अगर आप गुरु के आश्रय में नहीं जाते हो, मैं उनको गुरु स्वीकार करता हूँ, दीक्षा नहीं लेता, मैं उनको गुरु स्वीकार करता हूँ पर दीक्षा नहीं लेता। गुरु हाँ प्रभु जी,
दीक्षा से पहले ऑप्शन होती है, चॉइस होती है, अगर सेक्शन आए तो थोड़ा डाउट कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी होती है, एक बार दीक्षा ले ली तो फिर जो गुरु ने कहा उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, फॉलो करना
ही। ये आपका हुआ है कि पोस्ट दीक्षा आपको क्या पालन करना चाहिए, वी आर टेलिंग कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग दीक्षा, देयर इज अ डिफरेंस कि दीक्षा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दीक्षा लेने के बाद हमको गुरु के आदेश का अक्षरश पालन करना चाहिए, उसमें कोई हमें दलील नहीं, अपील नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, संदेह नहीं, डाउट नहीं, शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, एग्रीड। पर दीक्षा ली जाए उसका फायदा क्या होने वाला है, व्हाट इज द एडवांटेज। हाँ जी, संप्रदाय से प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते, कैसे कनेक्ट होते हैं आप डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो जाइए, आप माध्वाचार्य संप्रदाय के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दीजिए तो आप कनेक्ट हो गए। बट इस दीक्षा यू सी वट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, दिव्य ज्ञान एंड क्षय मीन्स आपके पापों का क्षय, गुरु आपके पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको पाप मुक्त कर देते हैं विद ए कमिटमेंट कि इन फ्यूचर विल नॉट कमिट एनी सिंस। आपको राधिका रमन के सामने, राधा पारसार्थी के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने, राधा गोपीनाथ के सामने, जो भी ड्यूटीज हैं मंदिर की उसके सामने बिठा के यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करके आपसे कमिटमेंट की जाती है। दीक्षा का मतलब है आपको दिव्य ज्ञान दिया जाता है, गुरु आपको दिव्य ज्ञान देता है। दिव्य ज्ञान का मतलब है ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलकया, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। व्हाट इज दैट ज्ञान रूपी प्रकाश, ही गिव्स यू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, देन यू हैव टू फॉलो हिम। तो इनकी बात बिल्कुल शत प्रतिशत ठीक है कि आपको उनके आदेश के ऊपर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट व्हाट ही सेज, बिकॉज ही नोज व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। आपको दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा, आपके पापों का क्षय नहीं होगा। देखिए गुरु जो है पापों को अपने ऊपर ले लेता, हरि नाम में आप अपराध करते हो, यू आर नॉट एट शुद्ध नाम लेवल, अब शुद्ध नाम के लेवल पे नहीं हो आप, आप अभी नाम अभास में भी नहीं पहुंचते प्रभु जी, अभी तक तो नाम अपराध ही हो रहे हैं, कटते हैं पर कितने कटते हैं। गुरु ने तो एक क्षण में पाप अपने पे ले लिए ना, आपको पाप मुक्त कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया आपको। हरि नाम से पता नहीं कब तक कटेंगे, कटेंगे 100% कटेंगे, पर आपकी आपके अपराधों पे डिपेंड करता है कितने अपराध आप कर रहे हो, आपको खुद नहीं मालूम मैं कितने अपराध कर रहा हूं। पर दीक्षा लेने के बाद गुरु आपको एकदम रिलीव कर देते हैं, और आपसे कमिटमेंट लेते हैं, कोई नाम अपराध नहीं, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं, वो सेवा अपराध नहीं, वो वैष्णव अपराध नहीं, वो नाम अपराध नहीं, मतलब किसी प्रकार का आप अपराध नहीं करेंगे। अब आपको जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब आपको विश्वास हो गया कि यू हैव टू फॉलो योर स्पिरिचुअल मास्टर इन टोटो। और फॉलो करने का पहला स्टेप क्या है कि आपने तत्व से जानना है कि गुरु तत्व क्या है और भगवत तत्व क्या है। गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं माना, ही कहते ना नाम अपराध में, उनको साधारण शरीर वाला व्यक्ति नहीं मानना। अब गुरु के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसका लेवल क्या है, देखिए दो आपको उदाहरण देता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या चाहिए। एक स्टोरी है जो हमने सुनी है, देखी नहीं, दूसरी लाइव है जो हमने देखी है, दो स्टोरी। एक नाथ जी एक वैष्णव संत हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके लाइफ का हिस्ट्री है, उनकी लाइफ स्टोरी है कि उन्होंने जो है जब भक्ति में आ गए तो भक्ति में आने के बाद गुरु के शरणागत हो गए और यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए इस दौरान में जो है उनके गांव का एक आदमी जो है वो गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा कि एकनाथ जी के दादा और दादी जो है बहुत परेशान हैं और बहुत रोते हैं, उनका बुढ़ापे में देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, तो उसको बहुत याद करते हैं, बहुत रोते हैं। तो गुरुजी ने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक कागज लिया, मैं एकनाथ के नाम एक पत्र दे देता हूं, जब भी वो पैठन घर था उनका, जब भी पैठन में आएंगे तो उनको एक पत्र दे देना, एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एकनाथ जी ने प्रण लिया हुआ था कि मैं हमेशा यात्रा करता रहूंगा और प्रचार करता रहूंगा। परंतु एक साल के बाद जो है जब एकनाथ जी अपने घर पैठन पहुंचे तो गांव के अंदर नहीं गए, गांव के बाहर एक मंदिर के अंदर टिके और वहीं से जो है प्रचार शुरू हुआ, तो उनके दादा दादी जो है वो पत्र लेके उनके पास आ गए, बोले जी आपके गुरु का पत्र है। ओहो, मेरे गुरु ने इतनी कृपा करी कि मेरे को पत्र लिख के दे दिया। तो उन्होंने जो है एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर पत्र रखा और उसको दंडवत प्रणाम किया। दिस इज वेरी विच वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही ये माननीय है, सम्माननीय है कि मेरे गुरु ने मेरे को पत्र लिखा। और उसके बाद जो है उसकी परिक्रमा करी, उस पत्र की परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद पत्र पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पत्र के अंदर कि तुम वहीं रहना, वहां से कहीं नहीं जाना, एक सेंटेंस लिखा हुआ। तो उन्होंने जो है जीवन के अंदर कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है यहीं रहना, तो मैं यहां ही रहूंगा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। तो वहीं सत्संग हुआ, वहीं मंदिर बना, वहीं भवन बना, वहीं पे जो है सत्संग जीवन भर करते रहे वो, गुरु के आदेश का पालन। जबकि प्रण लिया हुआ था कि मैं सारा जीवन यात्रा करूंगा, मैं कभी भी एक जगह पर टिक के नहीं बैठूंगा। पर किसी भी वजह से गुरु ने आदेश दे दिया है तो गुरु के आदेश का अक्षरश पालन किया है, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। उपनिषद में उल्लेख आता है कि ब्रह्मचारी को जब गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में गया तो गुरु ने उसको आदेश दिया कि ये लो तुम्हें 100 गाय देता हूं, इनको वन में ले जाओ, जब 1000 हो जाए फिर आ जाना, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। सारे लोग गुरुकुल में पढ़ने आते हैं, मुझे गाय चराने भेज दिया। देखो कमाल है, सब पढ़ने आ रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, और मेरे अकेले को गाय चराने भेज दिया, और गाय पे शर्त भी क्या बांधी, जो 100 की 1000 हो जाए फिर आना, उसके पहले मत आना। अब कब 1000 होंगी और कब मैं आऊंगा, और मैं तो मतलब ये सब तो पढ़ पढ़ा के निकल जाएंगे, मैं अभी पहली क्लास में भी भर्ती नहीं होऊंगा, मेरा तो भैया जीवन ही खराब हो गया, ये फर्स्ट भाव मन में आ सकता है, दिस फीलिंग यू कैन हैव। पर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, उन्होंने कहा गुरु ने कहा है तो उसके सत्य वचन, और उसको उठ के गाय लेकर चले गए। जब वो गाय 1000 हो गई तो कुछ वर्षों के प्रसाद जो है वो अपना उन गायों को लेके वापिस आ रहे थे, तो वापस जब आ रहे थे तो देखा क्या है कि रास्ते में ही एक दिन वो भगवान का चिंतन कर रहे थे तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हुआ और पूर्ण का पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान बिना पढ़े बिना स्कूल गए बिना वहां पे बैठे बच्चों के साथ उनको ऑटोमेटिकली आ गया। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्ञान पर चौथा अध्याय पढ़ेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ भगवान प्रकट कर देते हैं। कैसे हुआ? गुरु की सेवा करने के पश्चात उनके शब्दों को ब्रह्म वाक्य माना, कोई चेंज नहीं। सन 1999 या 2000 की बात है, समवेयर आई थिंक दिस इज द ईयर, जनकपुरी के अंदर कुछ समस्या चल रही थी तो गुरु महाराज वहां पर आए, एक घर के अंदर जो है कीर्तन हुआ, कथा हुई, प्रवचन हुआ, उसके बाद एक मीटिंग बैठी और मीटिंग के अंदर जो है गोपाल कृष्ण महाराज से एक प्रश्न किया किसी भक्त ने कि गुरु के आदेश का पालन कैसे करना चाहिए, हाउ डू वी फॉलो इट। तो महाराज ने जो है ये लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो मैं स्पष्ट वहां बैठा हुआ था, मेरे सामने चर्चा हो रही सारी, किसी नव दीक्षित भक्त ने एक प्रश्न किया था तो महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, इम्बाइब करनी चाहिए और उसके ऊपर अक्षरश चलना चाहिए। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्ड्स, मतलब मैचलेस, देयर इज नो कंपैरिजन। महाराज कहते हैं कि एक शिष्य बाहर से धूप में तपता हुआ आया, बहुत पानी की प्यास लगी है, ठंडा जल उसे चाहिए, ही नीड्स आइस कोल्ड वाटर, रेफ्रिजरेटेड वाटर, शीतल जल। गुरु के पास बैठा है, गुरु ने देखा कि तप रहा है, अच्छा बहुत गर्मी लग रही है ना, बोला गर्मी लग रही है, ये लो गर्म दूध पियो। तो गुरु ने गर्म दूध का गिलास उसको पकड़ा लिया। नहीं नहीं महाराज, मुझे ठंडा जल चाहिए, मैं दूध नहीं पीऊंगा, I'll take cold water, I don't want milk। गर्मी में गर्म दूध नहीं पी पाऊंगा, बड़ी गर्मी लग रही, मेरा बड़ा बुरा हाल। इसका मतलब है कि उसे गुरु की शक्ति पे और गुरु के वचनों पे, गुरु के आशीर्वाद पे विश्वास नहीं। जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास है वो ये समझ जाएगा कि गुरु ने अगर मुझे गर्म जल दिया, गर्म दूध दिया है इस गर्मी के मौसम में जब मुझे ठंडे जल की अभिलाषा है, तो उनकी कृपा से मेरी प्यास इसी गर्म दूध से बुझ जाएगी। ये फेथ होना चाहिए, दिस फेथ यू शुड हैव। क्या हमें है? कितने लोगों में है? वी डोंट हैव। हम लोग गुरु के पास जाते हैं, तीन प्रकार के शिष्य हैं, जब इसमें पढ़ेंगे आप भगवद गीता के अंदर तो आपको उल्लेख मिलेगा। द थ्री टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स, एक वो शिष्य हैं जो गुरु के पास जाते हैं और गुरु से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज मैं ये करना चाहता हूं, मेरा मूड ये करने का है, बस आप हां कर दो, आपकी नॉड चाहिए, आपकी यस चाहिए, मूड मेरा है, मन मेरा है, करना मैं चाहता हूं, सिस्टम मैंने अडॉप्ट कर लिया है, बट मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपनी मोहर लगा दीजिए, यस, फिर मैं कहूंगा देखा महाराज से क्लियरेंस आ गई, मेरी हां हो गई महाराज से, जो मेरा मूड था महाराज ने स्वीकार कर लिया, जो चीज मैं चाहता था महाराज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब इट इज ऑथराइज्ड। ये तृतीय श्रेणी का व्यक्ति है, थर्ड क्लास ड्यूटी है। इससे ऊपर शिष्य जो है गुरु के पास जाता है और जाके उनसे जो है पूछता है महाराज मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं, और हर मिनट हर पल एक सिस्टमेटिक आदेश चाहता है रोज का, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, इस महीने का प्रोग्राम क्या है, इस महीने आप मुझसे क्या चाहते हो, इस हफ्ते क्या चाहते हो, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं आपके रोज दर्शन करने, वगैरह 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 वगैरह। वो महाराज से डे टू डे एक्टिविटीज का आदेश लेता है और फिर उसके ऊपर चलता है, तो वो सेकंड क्लास डिवोटी है। सेकंड क्लास। अब फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन सा है? फर्स्ट क्लास डिवोटी वो है जो अपने गुरु के मूड को समझता है, इनको क्या चाहिए, और ऑटोमेटिकली दे देता है उनको। इट डजंट आस्क। मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे महाराज के साथ मीटिंग्स हुई और मैंने महाराज से बहुत सारे सवाल किए, एंड महाराज इज रिप्लाइड सो नाइसली। मीटिंग कितनी होती है? दो मिनट की या ढाई मिनट की, बस इससे ज्यादा नहीं। आई डोंट सिट विद हिम मच मोर। गुरु के आदेश में कितना दम है ये आपको प्रत्यक्ष, जब तक आप उस आदेश का अक्षरश पालन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको प्राप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मैं अपने बोस्ट नहीं कर रहा हूं, अपनी आदिति बता रहा हूं। 99 के अंदर जब मैं फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था बड़े मंदिर में, तो मैं महाराज मंदिर में होते थे तब भी दर्शन नहीं कर पाता था। इतनी मीटिंग्स होती थी, नया नया मंदिर बना था, प्रॉब्लम्स बहुत थी, सेटलमेंट बहुत करनी थी, डिवोटीज कम थे, ब्रह्मचारी नहीं थे इतने, कॉन्गेशनल डिवोटी नहीं थे, इतने प्रोग्राम्स नहीं थे, तो वॉलंटियर्स को निकालना, उनको पोस्ट करना। वीरेंद्र जी हंस रहे, इनको पता है उन्होंने सेवा करी है 98 में मेरे साथ। इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, इट वॉज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दोस डेज। तो मैं देखा करता था कि जैसे ही महाराज आए हैं, लोग उनके चारों तरफ घेरा खड़े, मतलब रोज इकट्ठे हैं, आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, मतलब बड़ा एकदम ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, बड़ी चिंता हो गई यार, मैं तो कर नहीं पाता। छह दिन मैं नर्सिंग होम में व्यस्त रहता हूं, नर्सिंग होम छोड़ के नहीं निकल पाता हूं। सातवें दिन मंदिर में आता हूं तो मीटिंग छोड़ के निकल पाता हूं। महाराज दिल्ली में है, सवेरे से लेकर शाम को 8 बजे दर्शन करने जा रहा हूं। सुबह में 9 बजे मंदिर पहुंचा, 8:30 मंदिर पहुंचा और दर्शन हो रहे रात को 9 बजे, 8:30 बजे जाके। तो बड़ा कष्ट होता था मेरे को। तो एक दिन मैं महाराज के पास गया तो मैंने महाराज से प्रश्न किया, महाराज ऐसा है कि मैं थोड़ा ना डिप्रेसिव फेज में जा रहा हूं, मुझे बड़ी अपने आरे में चिंता हो रही है कि लोग रोज आते हैं, आपके दर्शन करते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, मैं मंदिर में रह के भी आपके दर्शन नहीं कर पाता, मैं आपसे मिल नहीं पाता, तो मेरा क्या होगा, मेरी मतलब मैं वेयर विल आई लैंड टू। मैं तो मतलब गुरु के प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं, गुरु के पास आ नहीं पा रहा हूं, तो मतलब मेरा क्या होगा। तो महाराज ने एक ही लाइन बोली मेरे से, कहते हैं कृष्णहरी डोंट वरी, आई नो हूज हैंड आई हैव टू डिलीवर इन प्रभुपाद्स हैंड्स। एक सेंटेंस बोला, मुझे मालूम है मुझे किसका हाथ प्रभुपाद के हाथ में पकड़ाना है। रिलैक्स। तो एक लाइन ने उसके बाद मेरे जीवन की चर्या बदल दी। उसके बाद मुझे कभी चिंता नहीं हुई। और उसका अभी एग्जाम्पल मुझे अभी जन्माष्टमी पे मिला। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले की बात है, बड़े मंदिर के अंदर एक यूथ ने फेस्टिवल किया था उमंग, कोई 3,000 यूथ आया हुआ था, 3,500 के आसपास। तो महाराज का लेक्चर था उसमें, तो महाराज अपने कमरे से निकल के आ रहे थे प्रसादम हॉल के बाहर, सीढ़ी के बगल से जा रहे थे, तो मैं फवारे की तरफ से आया, दंडवत किया और महाराज के साथ साथ हो गया। तो चलते चलते जब हम पीछे पंडाल की तरफ जा रहे हैं तो महाराज ने मुझसे पूछा कि आई एम सीइंग यू आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और दिनों से तुमको देखा नहीं है। मैं महाराज 8 महीने हो गए मैं आपसे मिल नहीं पाया, 8 मंथ्स कीपिंग वेरी बिजी। तो यस महाराज, जब आप मंदिर में होते हैं तो मेरे लेक्चर होते हैं, मैं लेक्चर में बिजी रहता हूँ, संडे को 3-3, 4-4 लेक्चर हो जाते हैं, और जब मैं फ्री होता हूं तब आप वृंदावन में होते हैं या कहीं बाहर होते हैं, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो महाराज चुप रहे कुछ क्षण के लिए, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज ओके आई विल डू इट, कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हियर आई विल कैंसिल माय लेक्चर एंड कम एंड सी यू एंड पे माय ऑबिसेंसेस। नो नॉट एट ऑल, वी विल टॉक ऑन फोन, गो एंड गिव लेक्चर्स, डू प्रीचिंग। तो महाराज के भाव को समझना है, महाराज का भाव क्या है। महाराज मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम लोग जब फ्राइडे प्रोग्राम किया करते थे, एक प्रोग्राम जनकपुरी होता था, एक प्रोग्राम हरिनगर होता था, मेरे घर पे एक जनकपुरी में होता था। तो महाराज ने मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तो हमने कहा ठीक है, हमने प्रोग्राम अरेंज किया, प्रसाद वगैरह बनाया, सबको ज्यादा डिवोटीज को इन्वाइट किया। तो जनकपुरी के ग्रुप ने जो है ये फैसला किया कि हम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल करके आज हरिनगर चले जाएंगे। महाराज आ रहे हैं तो दो किलोमीटर तो है, दो ढाई किलोमीटर, तो हम लोग जो है यहां से अपना प्रोग्राम आज कैंसिल करते हैं और हरिनगर चले जाते हैं। अब पता नहीं कैसे महाराज को इसकी भनक मिल गई, पता लग गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ही इमीडिएटली कॉल्ड जनकपुरी पीपल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू कैंसिलिंग योर प्रोग्राम, डू इट, डोंट कम टू हरिनगर। जब बाद में पूछा, बात हुई, तो महाराज ने बोला कि तुम में से कितने लोग आते हरिनगर में, 8 या 10, बाकी 70 लोगों क्या करते, वो तो प्रीचिंग मिस करते ना, यू मस्ट प्रीच। तो जो फर्स्ट क्लास का डिवोटी है उसकी इच्छा क्या रहती है कि महाराज का मूड समझेगा, गुरु का मूड समझेगा और उसके बाद जो है उसके ऊपर चलेगा। ही डजंट हैव टू आस्क फॉर एवरी मिनट एंड एवरी टाइम कि सुबह का आदेश क्या है, दोपहर का आदेश क्या है, शाम का आदेश क्या है, कल का आदेश क्या है, परसों का आदेश क्या है। डजंट हैव टू मूव दैट वे। उसको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसको कोशिश करनी है महाराज के मूड को समझे और उसके ऊपर चले। तो यहां पर कह रहे हैं कि उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसकी परिक्रमा करी, तो नारद मुनि को अशोक ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु स्वीकार करने का फॉर्मूला क्या हुआ कि आपको गुरु के आदेश को अक्षरश समझना है, उसको कहीं भी उससे डेविएट नहीं होना, जो उन्होंने कह दिया दैट इज फाइनल। हम जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक कथा आती है कि धौम्य ऋषि का एक शिष्य था अरुणी। गांव में कथा चल रही थी, बाढ़ आ गई, तब पानी आ गया, खूब तेज मेह बरसा, तो खेत की जो मेड़ है वो टूट गई और पानी खेत के अंदर ओवर फ्लो होना शुरू हो गया। तो धौम्य ऋषि ने जो है अरुणी से बोला कि तुम जाओ थोड़ा मिट्टी वहां लगा के उस मेड़ को पक्का कर दो ताकि जो है पानी खेतों को खराब नहीं करे, बाहर ही बाहर से डायवर्शन लेके मोड़ के चला जाएगा। रात का समय था, शाम का समय था, अरुणी वहां गया, मिट्टी लगाता, मिट्टी फिर बह जाती, मिट्टी लगाता फिर बह जाती, मिट्टी लगाता फिर बह जाती। परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, गुरु ने आदेश दिया है, पानी रुक नहीं रहा है, तो सामने लेट गया ताकि पानी उसके जोर से उसके बॉडी पे टच करता था और फ्लो दूसरी तरफ मोड़ के चला जाता था। सुबह जब जो है मॉर्निंग के अंदर जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स चल रहे थे उसमें जो है जब गुरुजी ने नहीं देखा कि अरुणी नहीं आया है तो ही गॉट वरीड, ये कहाँ हो गया, ऐसा तो नहीं मेरे आदेश का पालन करने के चक्कर में भाग ही गया हो, गोली हो गया हो, यहां से पता नहीं कहां गया हो। तो पूरी की पूरी टीम लेके उसको ढूंढने निकले कि अपने शिष्य को ढूंढा जाए, तो देखा बुखार में बेसुध बेहोश उसने जो है मेड़, खुद मेड़ बना हुआ जो है मेड़ के निकट लेटा हुआ है और पानी उसके ऊपर आ रहा है और बह के चला जा रहा है। दिस इज गुरु के आदेश का पालन करना। हम लोग क्या कहते हैं, जन्माष्टमी फेस्टिवल आता है तो हमारे पास जो वॉलंटियर्स आते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, प्रभु जी मुझे ना मंदिर में पोस्ट कर देना, ठाकुर जी के दर्शन होते रहे। तो भाई पार्किंग में कौन खड़ा होगा, वो सिक्योरिटी अरेंज कर लो, जूता सेवा कौन करेगा, वो सरदारों को बुला लो, वहां से आ जाएंगे जोड़ा सेवा करने के लिए। व्हाट आर यू मेंट फॉर, हर व्यक्ति मंदिर में खड़ा हो जाएगा तो बाहर कौन सेवा करेगा। जो आदेश गुरु नहीं दे पाए हैं पर उनके वरिष्ठ शिष्य दे रहे हैं, उनके सीनियर डिसाइपल्स दे रहे हैं, उनके उनका आदेश है, वो उनके मूड को समझते हुए आदेश दिया जा रहा है, उस आदेश का भी अक्षरश पालन करना आवश्यक है, उससे आप डेविएट नहीं हो सकते। पर हम लोग जो है मनोधर्म करते हैं, अपनी इच्छा पे चलते हैं। यहां पर जो है प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है किस तरह भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करना चाहिए और शिष्य का कर्तव्य है वे उनके उपदेशों को हृदयंगम करें। उपनिषद में फिर एक कथा आती है कि याज्ञवल्क्य जी गार्गी से कहते हैं कि जिस मनुष्य को इस जीवन के अंदर भगवत धाम प्राप्त करने का लौल्य नहीं है, जो भगवत धाम जाने के लिए भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करता है, वो व्यक्ति कृपण है। कृपण, ही इज ए माइजर। यही बात जो है भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में कहते हैं, दूरेन ही अवर्म कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुद्धो शरणम इच्छे कृपना फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा गर्हित समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तो यहां कृपण शब्द जो है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान, कंजूस है। क्यों शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि वो भक्त जो है वो डिवोटी है या वो जो मनुष्य जो है वो कंजूस है। कंजूस का अर्थ क्या होता है, व्हाट डज कंजूस मीन? हम साधारण भाषा में कंजूस को जो है धन से तोलते हैं, इसके बाद पैसा है पर खर्च नहीं करता, ये कंजूस। मतलब आपके पास कोई फैसिलिटी है और आप उसको यूज नहीं कर रहे। साधारण भाषा में कंजूस धन के लिए यूज होता है, जब उसको ब्रॉडर वे में यूज करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आपके पास सुविधा है परंतु आप सुविधा का यूज नहीं कर रहे। कार रखी हुई है परंतु स्कूटर पे दौड़ रहे हैं, वो संभाल के रखी, 15 दिन में एक बार उसको हवा पानी लगवा देंगे, थोड़ा चला के इंजन गर्म कर देंगे, बैटरी चार्ज कर देंगे, उसके बाद यूज नहीं करेंगे। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का इस्तेमाल क्या हो रहा है? भगवत धाम जाने के लिए आप यूज नहीं कर रहे हो, भौतिकतावादी संसार में इंद्रिय भोग के लिए यूज कर रहे हो, तो आपसे बड़ा कंजूस और कोई नहीं है, आपसे बड़ा कृपण और कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर का इस्तेमाल जानते ही नहीं। यू डू नॉट नो। 16वां अध्याय पढ़ेंगे, जब आसुरी संपदा और देवी संपदा की बात हो रही है तो वहां भगवान जो है कहते हैं कि आई एम वरीड, आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? कि मैं जिनको नरक दे रहा हूं वो निम्न योनियों से नरकों से ऊपर उठकर शुद्ध होकर आ रहे हैं, परंतु जिनको मैंने मनुष्य योनि दी है वो नरक जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। खुश होगा क्या भगवान? खुश होंगे? आपको मनुष्य योनि मिली है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो नरक जाने के लिए, और जिनको मैंने नरक दिया है वो शुद्ध होने के बाद ऊपर लिफ्ट होके ऊपर की योनियों में आ रहे हैं, अल्टीमेटली मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, फिर उनको इतनी शुद्धि हो चुकी होगी अब वो गलती नहीं करेंगे। परंतु हम लोग कितने कंजूस हैं कि हम लोग ये जानते हुए भी कि मनुष्य शरीर का प्रयोग क्या होना चाहिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कर्मियों के प्रयास समय का अपव्यय होते हैं, अर्थात जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है उनका जो प्रयास है वो टाइम का मिस यूटिलाइजेशन है, वो समय को कैसे प्रयोग करना है ये नहीं जानते। दे आर मिसअंडरस्टूड, मिसगाइडेड एंड दे मिस यूटिलाइज देयर टाइम। वो नहीं समझते हैं कि मनुष्य शरीर का फायदा क्या है, हमें क्यों मिला है। वो ये नहीं जानते हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर जब मुझे भगवत धाम चला जाऊंगा तो क्या लाभ होने वाला है। उनकी लिमिट जो है कहां तक है, स्वर्ग पृथ्वी या नरक। नरक जाना नहीं चाहते, स्वर्ग सब चले जाते हैं। आपने आज तक अपने जीवन में किसी की डेथ के बाद ये उसका कार्ड आता है या शोक वहां चर्चा करते हैं उठाले में, किसी ने बोला है कि नरकवासी होगा, बदमाश हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, लुटेरा हो, कभी नरकवासी बोला उसको? हर आदमी स्वर्ग चला जाता, पब्लिक भेज देती, पब्लिक घर वाले हर एक को स्वर्ग भेज देते हैं, स्वर्गवासी हो गए, एज इफ वो गेट ऐसे खुला हुआ है जो मर्जी घुसता चला आए वहां पे। अगर इनको पता लग जाए कि जो वैकुंठ है या उसके ऊपर गोलोक वृंदावन है तो हर कार्ड पे छिपे सीधा आएगा हर व्यक्ति गोलोकवासी हो गया, विदाउट रियलाइजिंग कि यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख लें, शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब आपके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आपको पुनः मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आना पड़ता है, पुण्य लोकों की समाप्ति के बाद। तो पुण्य कर्म जो है उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनका भी एक दायरा है, उस दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते। क्या पाप है क्या पुण्य है इसका डिसीजन करना बड़ा जरूरी है, पर हमें न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, क्योंकि पाप होगा तब भी भोगने को शरीर चाहिए, पुण्य होगा तब भी भोगने को शरीर चाहिए, चाहे देवता का मिले और चाहे दानव का मिले, चाहे नाग का मिले, चाहे पाताल लोक में मिले और चाहे ब्रह्म लोक में मिले, किसी भी लोक में मिले, जब आपके पास कर्म का फल है तो भोगने के लिए शरीर। व्हाट यू नीड इज कि मेरे कर्म ऐसे हों जिनका को फल ना प्राप्त हो, और वही है मनुष्य को भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात ऐसे कर्म करने चाहिए जिसका भौतिक फल प्राप्त ना हो। अगर भौतिक फल प्राप्त होगा तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आप उससे पार नहीं जा सकते। सो दैट इज टू बी लर्न्ड। यही भगवान दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं बड़े सुंदर तरीके से, कर्म सु कौशलम बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात दोग्या युजस्व योग है कर्म सु कौशलम, कि आपको अपने कर्मों में कुशलता प्राप्त करनी है। परंतु दक्ष को किसमें कुशलता दी भगवान ने? संतान पैदा करने में। ही इज एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग प्रोजेनाई, वो अपने संतान पैदा करने में दक्ष है, वो आगे चलाना चाहता है। दक्ष का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, नाम रखा गया दक्ष, प्रजापति अर्थात प्रजा के सृजन करने के लिए वो दक्ष है। और चूंकि प्रजा का सृजन करने में दक्ष है, इसलिए वो जो है भगवत धाम जाने के लिए जितने प्रयास है उनको मूर्खतापूर्ण मानता है। नारद जी का दुश्मन बन जाएगा अभी कि पहली बार आपने मुझे धोखा दिया, मैंने अपने पुत्र जो है आपके शिष्यधाम भेजे, दूसरी बार फिर आप ऐसा ही कर रहे हो। तो एक बात समझ लेनी चाहिए, जब आप 25वां श्लोक पढ़ेंगे तब और बात क्लैरिफाई होगी कि गुरु की एक वैल्यू है और राजा या कोई भी गृहस्थ अपने शिष्य को गुरु के पास भेजेगा ही, चाहे पहले नुकसान हो चुका हो चाहे एंटी हो। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे, और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। तो शुक्राचार्य ने रिफ्यूज नहीं किया कि मेरे दुश्मन, मैं तो असुरों का गुरु हूं ना, मैं इन्हें गाइड करता हूं कि तुम्हें देवताओं से युद्ध कैसे करना है, मेरे पास वो संजीवनी है कि व्यक्ति को मरने के बाद मैं जीवित कर देता हूं। वो संजीवनी उन्होंने अल्टीमेटली कच्छ को दी, ऐसी लीला रची गई कि कच्छ ने वो संजीवनी प्राप्त करी। जब आप महाभारत का आगे जाके पढ़ेंगे तो द्रोणाचार्य के पास द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। तो दुश्मन है एक दूसरे के, परंतु शिष्य को गुरु के पास जाना है चाहे वो दुश्मन का है, क्योंकि गुरु इज गुरु, और गुरु को रिफ्यूज नहीं करना है कि मेरे दुश्मन का पुत्र इसलिए शिक्षा नहीं दूंगा। ही हैज टू एक्सेप्ट हिम एज ए डिसाइपल। ये हमें बहुत बड़े संदेश मिलते हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। तो गुरु की बहुत वैल्यू है, ये नहीं सोचना है दूसरी पार्टी का है, नहीं कोई पार्टी नहीं गुरु के पास। गुरु हैज गॉट नो पार्टी, गुरु इज वन एंड ओनली वन। तो इसलिए जो है यहां पर कहा जा रहा है कि नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षवों ने सैकड़ों संतानें उत्पन्न करने, उनकी देखभाल करने के झंझट में पड़कर भौतिकतावादी जीवन में न फंसने का निश्चय किया। इवन गुरु गाइड्स यू प्रॉपरली देन यू टेक ए डिसीजन। डिसीजन क्या है? ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि बुद्धि आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, अभी भी भौतिकतावाद में जा रही है या आध्यात्मिकतावाद में जा रही है, किस वाद में जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर जो है उनको बात गुरु की एकदम समझ में आ गई, उन्होंने उसी पथ का अनुसरण किया जिससे कोई लौट कर इस जगत में फिर से नहीं आता। और हमें भी जो है गुरु के आदेश का ऐसे अनुसरण करना चाहिए कि हम लोग लौट कर इस जगत में ना आए। दैट इज द फाइनल थिंग एंड वी मस्ट ट्राई एंड फॉलो अवर स्पिरिचुअल मास्टर वेरी सिंसियरली वेरी ऑनेस्टली। हरे कृष्ण। श्रील भगवान की।